स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 19 दिसंबर और दिन गुरुवार। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन।
हम लोगों को बेघर करने के चक्कर में लगे हुए मोदी सरकार, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।
लखनऊ में प्रदर्शन हुआ हिंसक।
अभी 5 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और एक बाइक और एक कार जलाने की सूचना है। अभी स्थिति नियंत्रण में आ रहा है तेजी से।
बीबीसी लेकर आ रहा है बीबीसी इंडिया ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड।
2000 के बाद तो काफ़ी सीनरी चेंज हो गई है। पहले ओलंपिक तक जाना ही बहुत बड़ी बात मानते थे, लेकिन अब महिलाएं ओलंपिक में जा भी रही हैं और मेडल जीत के भी ला रही हैं।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। हाल में बने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में आज विरोध प्रदर्शन हुए और प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने की पूरी कोशिश में लगी रही। राजधानी दिल्ली समेत गुजरात, कर्नाटक, मुंबई, बंगाल और उत्तर प्रदेश में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर राजधानी दिल्ली में मेट्रो के 20 से अधिक स्टेशनों को आज बंद रखा गया और पहली बार यहां मोबाइल फोन सेवाओं पर रोक लगाई गई। इधर गृह मंत्रालय ने आज देश में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए आपात बैठक बुलाई है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने संसद के सत्र के शुरू होने से पहले यानी स्टेट ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट में सरकार की योजनाओं के बारे में उद्बोधन देते हुए कहा कि अगले साल जनवरी के आखिर तक यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहेगी। माना जा रहा है कि मौजूदा सत्र में ब्रेक्सिट पर चर्चा होगी और इसके बाद ब्रितानी सरकार यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते और दूसरे देशों के साथ अन्य समझौतों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के संबंध में कानून पर बहस करना और उत्तरी आयरलैंड में विकास के काम पर भी बहस होगी।
My lords and members of the House of Commons, my government's priority is to deliver the United Kingdom's departure from the European Union.
संसद में मौजूद सभी लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य, मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी कि वो 31 जनवरी तक ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया पूरी करे। सरकार की कोशिश रहेगी कि वो तय समय सीमा के बीच इस काम को अंजाम दे और देश के लोगों की बेहतरी के लिए सभी मौकों का लाभ उठाए। इसके बाद सरकार की कोशिश होगी कि वो मुक्त व्यापार समझौते के जरिए भविष्य में भी यूरोपीय यूनियन से संपर्क बनाए रखे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि STARTE को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस समझौते के तहत रूस और अमेरिका सीमित संख्या में रणनीतिक तौर पर अहम मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। इसी साल में अगस्त में अमेरिका ने INF परमाणु संधि से अपने हाथ खींच लिए थे, जिसके बाद STARTE के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसके बाद रूस ने कहा था कि उसे लगता है कि इस संधि को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अब रूस ने इस पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। इस साल के आखिर से पहले मौजूदा परमाणु हथियार नियंत्रण संधि STARTE को आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। लेबनान में जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान के बीच देश की राजनीतिक पार्टियां आज प्रधानमंत्री के नामांकन पर विचार विमर्श कर रही हैं। इस पद के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री हसन डियाब की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, जिन्हें हिजबुल्ला और उसके सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है। इसी साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री साद हरीरी ने अपना इस्तीफा दे दिया था और वो फिलहाल कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। लेबनान में बीते कुछ वक्त से राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की मांग तेज हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के आवास के सामने सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री छुट्टियों से वापस आएं और देश में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इधर जंगलों में लगी आग के कारण सिडनी आज काले धुएं की गिरफ्त में रहा और यहां लगातार दूसरे दिन तापमान सामान्य से काफी अधिक रहा। न्यू साउथ वेल्स में आग के कारण आपात स्थिति की घोषणा की गई है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है दिसंबर की 19 तारीख और दिन है आज गुरुवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत नागरिकता संशोधन कानून से। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। पश्चिम में अहमदाबाद से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में चेन्नई तक विरोध प्रदर्शन हुए। हजारों लोग सड़क पर आए, जिनमें नौजवान लड़के लड़कियों के अलावा बुजुर्ग लोग भी शामिल थे। सैकड़ों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कई जगह आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहीं कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई जगहों पर गाड़ियां जला दी गईं। बेंगलुरु में जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले कुछ लोगों की आवाजें।
हम ये बिल रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं।
हम लोगों को बेघर करने के चक्कर में लगे हुए मोदी सरकार, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और कभी भी हम इसका समर्थन नहीं कर सकते, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़ जाए।
किसको भी अगर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हो कि इक्वालिटी क्या होती है, बराबरी क्या होती है, उनको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि ये सारे एग्जिस्टिंग हमारे लॉज के खिलाफ है। इसमें हर्ज कुछ नहीं है, हर्ज इस कि तुमने किस बेसिस पे इसको इंक्लूड किया और किस बेसिस पे किसको एक्सक्लूड किया है। हमने, आपने अफगानिस्तान चुना है, म्यांमार की छोड़ दिया, श्रीलंका की छोड़ दिया।
आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि सिटीजनशिप किसी को मिलेगी इंडिया के अंदर, ना कोई कास्ट होगा, ना क्रीड होगा, ना कोई रिलीजन होगा, ना कोई जेंडर होगा। ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रीएम्बल है उसको ये वायलेट करता है।
पाकिस्तान में मोर देन द हिंदूज द अहमदियाज एंड द शियाज आर द पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटी, एंड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में ही माइनॉरिटीज क्यों लागू किया है।
उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त इस बिल की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों में एक किस्म का डर है, केवल मुसलमान नहीं, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, सभी नागरिकों के अंदर ये डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो, कागज दिखाओ कि आप देश के नागरिक हो, तो इस देश में गरीबों के पास कागज नहीं है। 70% से ज्यादा लोगों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं होगा, कागज दिखाने को नहीं होंगे, तो फिर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप देश छोड़ के जाओ, तो वो कहाँ जाएंगे? ये देश तो अपना है, ये देश तो सब लोगों का है, यहीं पैदा हुए, हमारे बाप दादा परदादे सब यहीं पैदा हुए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो सभी लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या बर्ताव होगा। खासकर गरीब आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब लोग इस टाइम डरे हुए हैं। इस कानून से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मेरी हाथ जोड़ के अपील है सभी केंद्र सरकार से कि इस कानून को इस टाइम लाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत इस टाइम है तो युवाओं को रोजगार देने की है।
ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस वक्त सीधे चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी के पास। सलमान, क्या जंतर मंतर पे अभी भी लोग हैं या वो अब लौट चुके हैं?
नहीं, अभी तक डटे हुए हैं लोग, भीड़ जमी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्स होगा, अब हटने लगेंगे लोग, क्योंकि काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पारा नीचे जा रहा है और ओस भी गिर रही है, पुलिस के जवान तैनात हैं, और लेकिन नारेबाजी तो कर ही रहे हैं छात्र। हालांकि संख्या कम है, बहुत सारे लोग लौट गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी डटे हुए हैं। अब पता नहीं कितनी देर तक रहेंगे यहाँ पर, ये कहना मुश्किल है।
सलमान, आप दिन भर आज लाल किला और मंडी हाउस, दिल्ली में कई जगहों पर बहुत कुछ हुआ आज, आपने दिन भर उसको देखा, क्या देखा आपने? दरअसल
देखिए, ये मंडी हाउस में भी प्रदर्शन हुआ, छात्र छात्राएं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग वहां पहुंचे और वहां गाड़ियां तैनात थी पुलिस की, पहले से ही बसें जिसमें उनको लाद करके डिटेन करके ले जाया गया, क्योंकि पुलिस का कहना था कि 144 लागू थी उस इलाके में, इसलिए उन्होंने उल्लंघन किया है। गिरफ्तार होने वालों में योगेंद्र यादव भी थे और तहसीन पूना वाला से भी मेरी बात हुई जब उनको बस में बैठाया जा रहा था उस वक्त। और इसके अलावा जामिया में तो सातवां दिन था आज प्रदर्शन का, और बिल्कुल अलग तरीके से प्रदर्शन इस बार उन्होंने किया कि सड़क पे ट्रैफिक भी चलता रहा और उन्हीं के लोग उसको मैनेज भी कर रहे थे, लेकिन जो सेंटर बन गया पूरे आंदोलन का वो जंतर मंतर बन गया, जो कि पार्लियामेंट के बहुत पास है। हालांकि यहाँ पर नहीं होना था, उसको मंडी हाउस में होना था, लेकिन पुलिस ने इस बार ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया प्रदर्शनकारियों पर, इस वजह से मुझे लगता है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। बस इतना जरूर हुआ कि मेट्रो स्टेशन बंद रहे, इंटरनेट की सेवाएं ठप रही, फ्लाइटें रद्द हो गई और कई फ्लाइटें जो है वो देर से उड़ पाई, क्योंकि जो फ्लाइट क्रू है वो पहुंच नहीं पाया, जाम लगा रहा पूरी दिल्ली में।
جی بہت شکریہ سلمان آپ کا اس تازہ جانکاری کے لیے. اور اسی جنتر منتر پہ جہاں لوگ ابھی اس وقت پردرشن کر رہے ہیں وہاں لوگوں نے کچھ گانا بھی گایا, آپ بھی سنیے. تو یہ تھے جنتر منتر سے کچھ لوگ. اور ناگرکتا قانون کے خلاف اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سمیت راج کے کئی حصوں میں ویرودھ پردرشن ہوئے. سنیے لکھنؤ سے سمیر آتمد مشر کی رپورٹ.
لکھنؤ میں ناگرکتا قانون کے خلاف مکھیہ روپ سے پریورتن چوک پر پردرشنکاریوں سے پہنچنے کا آہوان کیا گیا تھا, لیکن وہاں جانے والے سبھی راستوں پر بیریکیڈنگ لگا دی گئی تھی. کل شام کو ہی ڈی جی پی او پی سنگھ نے یاد دلایا تھا کہ پورے راجیہ میں دھارا 144 لاگو ہے اور یدی اس کا الگھن ہوا تو کارروائی ہوگی, لیکن دھارا 144 کا نہ صرف الگھن ہوا بلکہ پردرشن ہنسک بھی ہو گیا. سنبھل میں جہاں روڈ ویج کی ایک بس آگ کے حوالے کر دی گئی, وہیں لکھنؤ میں پولیس چوکی میں آگ زنی ہوئی, کئی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور پولیس کو گولیاں بھی چلا دی گئی. بتایا جا رہا ہے کہ کچھ پردرشنکاریوں کی اور سے بھی فائرنگ کی گئی, کئی پولیس کرمی گھائل بھی ہوئے ہیں, کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. پریورتن چوک پر راجیہ کے کئی اعلی ادھیکاری موجود تھے. اے ڈی جی قانون ویوستھا پی وی راما شاستری نے بتایا,
ابھی 5 لوگوں کی اریسٹ ہو چکی ہے اور ایک بائک اور ایک کار جلانے کی سوچنا ہے. ابھی استھتی نینترن میں آ رہا ہے تیزی سے اور ہمارے آفیسرس لگے ہیں, ایکسٹرا فورس بھی لگا ہے. ابھی میں خود یہاں موجود ہوں, سارے افسرس ہیں, اے ڈی جی زون صاحب بھی شہر میں بھرمن کر رہے ہیں, پولیس جگہ جگہ لگی ہے لوگوں کی سرکشا کے لیے لگی ہے, اور کوئی بھی شرارتی تتو اپدرو کرنے کا کوشش کریں گے ان کو بہت کڑی مقابلہ کر کے پولیس ان کو ان پر سخت کاروائی کرے.
پردرشن راجیہ کے انیہ حصوں میں بھی ہوا. الہ آباد وشو ودیالیہ اور بی ایچ یو سمیت کئی وشو ودیالیوں کے چھاتروں نے بھی پردرشن کیا. راجیہ کے 12ویں تک کے اسکول ٹھنڈ کی وجہ سے پہلے ہی 2 دن کے لیے بند کیے جا چکے ہیں, لیکن اسے بھی پردرشن سے ہی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے. سماجوادی پارٹی کے کئی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو صبح ہی نظر بند کر دیا گیا تھا, جبکہ کانگریس کے پردیش ادھیکش اجے کمار للو سمیت کئی کانگریسی گرفتار کر لیے گئے. سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اکھلیش یادو کا کہنا تھا,
سب کو انہوں نے پورا کا پورا گھیر لیا ہے اور پورا کا پورا بٹوارا کر دیا ہے. یہ بانٹ کر کے راجنیتی کرنا چاہتے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ. بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ڈرا کے راجنیتی کر رہی ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی نفرت پھیلا کر کے راجنیتی کر رہی ہے, پورا دیش سڑکوں پر ہے.
سرکار کی سختی کے باوجود کئی جگہوں پر ابھی بھی چھٹ پٹ پردرشن اور ہنسا کی خبریں آ رہی ہیں. راجیہ بھر میں پولیس نے بڑی سنکھیا میں لوگوں کو گرفتار کیا ہے. سمیر آتمج مشر, بی بی سی لکھنؤ.
ادھر بہار میں وام دلوں نے بند کا آہوان کیا تھا. راجدھانی پٹنہ میں جے این یو کے پورو چھاتر سنگھ ادھیکش کنہیا کمار بھی شامل ہوئے ویرودھ پردرشن میں. سنیے پٹنہ سے سیٹو تیواری کی رپورٹ.
چھٹ پٹ گھٹناؤں کو چھوڑ کر بہار بند شانتی پورن گزرا. این آر سی اور ناگرکتا سنشودھن قانون کو لے کر وامپنتھی دلوں نے بہار بند کا آواہن کیا تھا. بہار کے سبھی ضلعوں میں بند سمرتھکوں نے پردرشن کیا. کئی جگہ اگر ہوئے بند سمرتھکوں کو پولیس نے حراست میں بھی لیا.
جو کمانے کھانے والے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کاغذ آپ کو نہیں ملے گا, باڑھ میں سکھال میں دہار میں یہاں وہاں جا کے جو بس جاتے ہیں ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں. سیدھے حملہ یہاں کے محنت کش لوگوں پر, یہاں کے مزدوروں پر جن کے پاس رہنے کے لیے زمین نہیں ہے, جن کے پاس روزگار نہیں ہے, ان تمام لوگوں کے اوپر یہ حملہ ہے.
بیتے کچھ دنوں سے پٹنہ سہیت دیش بھر میں سی اے اے یعنی ناگرکتا سنشودھن قانون اور این آر سی کے خلاف ہو رہے پردرشن ہنسک ہو گئے تھے, جس کے چلتے پرشاسن اس بند کو لے کر سترک تھا. بھاری پولیس بل کی تیناتی کے بیچ پٹنہ کے ڈاک بنگلہ چوراہے پر وامپنتھی دلوں نے اپنی طاقت کا پردرشن کیا. یہاں سی پی آئی نیتا کنہیا کمار نے بھی پردرشن میں حصہ لیا. بند سمرتھکوں کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا, اس बंद को महागठबंधन दल सहित जन अधिकार पार्टी ने भी समर्थन दिया था। जहां राजद की बंद में हिस्सेदारी सड़कों पर ना के बराबर दिखी, वहीं जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने हथकड़ियां पहनकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा,
अब सीरिया और इसराइल की स्थिति पैदा करोगे और हिटलर नेपोलियन के तरह किंग जॉन के तरह देश चलाओगे और नॉर्थ ईस्ट की आजादी और उसकी संस्कृति पर चोट करोगे, कश्मीर कैद कर दोगे, जामिया एमयू और ट्यूब पर गोली चलाओगे।
बंद समर्थकों द्वारा राजगीर, नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अजमेर सियालदा एक्सप्रेस सहित कई पैसेंजर ट्रेन का परिचालन भी कुछ समय के लिए बाधित किया गया, लेकिन मोटे तौर पर रेल परिचालन सामान्य रहा।
उधर कर्नाटक में भी बंद का अच्छा खासा असर रहा। राजधानी बेंगलुरु में जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
इस तरह के नारेबाजी न सिर्फ बेंगलुरु में बल्कि कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी आज सुनने को मिली। फर्क इतना ही था कि कर्नाटका को छोड़कर दूसरे राज्यों में पुलिस ने एक या दो घंटों का समय दे दिया था प्रदर्शनकारियों को अपना विरोध सीएए और एनआरसी के खिलाफ दर्ज करने के लिए। लेकिन दिलचस्पी की बात बेंगलुरु में हुई जब इतिहासकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक रामचंद्र गुहा को पुलिस हिरासत में लेकर चले गई और उसका वीडियो वायरल हो गया। करीब एक घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बयान दिया, ये कहते हुए कि पुलिस सिर्फ गुंडागर्दी करने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए और सामान्य नागरिकों को नहीं। इस बयान के बाद पुलिस ने टाउन हॉल और दूसरे इलाकों में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना छोड़ दिया और टाउन हॉल के सामने प्रदर्शनकारियों की संख्या ज्यादा हो गई। नारेबाजी जोरों से चली और उनमें से एक बुजुर्ग गीकाय औलाख ने बीबीसी से कहा वो क्यों वहां प्रदर्शन करने आई थी।
This is very sad. India is going the wrong way. 2014, Modi was all development, development. All the bills that have come has come dividing the society.
इससे हमें बहुत दुख हो रहा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए तो वो सिर्फ विकास विकास कह रहे थे, लेकिन उसके बाद जो भी विधान लाया है वो समाज को बांटने का ही है। ये बहुत ही खराब है। हम आज यहाँ हैं लेकिन कल हमारे बच्चे और नाती पोते भुगतना नहीं चाहिए। ये थे गीकाय औलाख के शब्द। पुलिस का मानना था कि कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी थक कर चले जाएंगे, लेकिन वो जमे रहे। फिर कई वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ता वहां जब प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की तो उनको बोला गया कि पहले जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनको रिहा कराएं। सामाजिक कार्यकर्ता लियो सल्दाना ने बीबीसी को बताया,
I mean, behind me are hundreds of people who just came across from across the city and they came to express their angst, their akrosh, the right word for that, against the CAP and NRC.
पिछले दो तीन दिनों से विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन कल रात को पुलिस ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा दिया। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो हिरासत में लिए गए हैं उनको पहले रिहा करना चाहिए। ये थे लियो सल्दाना के शब्द। लेकिन कर्नाटका के तटीय शहर मंगलुरु में पुलिस को लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों ने कुछ पुराने टायर को भी आग लगा दिया। हैदराबाद और चेन्नई में प्रदर्शनकारियों को समय दिया गया ताकि वो अपना विरोध प्रदर्शन करें। थोड़े ही लोगों को हिरासत में लिया गया, जहां कि बेंगलुरु में करीब 250 लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ 5 घंटों बाद रिहा कर दिया गया। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और एक दफा फिर चलते हैं इमरान कुरैशी के पास, क्योंकि मंगलुरु से कुछ हिंसा की खबरें हैं। क्या इमरान आपको मेरी आवाज आ रही है? ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि हिंसा में किसी के मारे जाने की भी आशंका है?
जी हाँ, पुलिस ये खबर आ रही है कि एक जब लाठीचार्ज कामयाब नहीं हुआ तो शाम को तो पुलिस स्टेशन को ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को कहीं हमला किया और उसको आग लगाने की कोशिश की। तो पुलिस ने भी पुलिस फायरिंग की और उसमें शायद थोड़े लोग घायल हुए हैं, मगर पुलिस के पास से ये कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है अभी तक कि कितने लोग घायल हुए और अगर हुए हैं तो कितने लोगों की मृत्यु हुई है। कहा जा रहा है कि करीब एक या दो लोगों की तो को कुछ ज्यादा ही घायल मतलब जख्म लगे हैं,
लेकिन अभी पुलिस ने कोई कंफर्मेशन नहीं की है।
कोई कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से नहीं है, मगर ये बात कंफर्मेशन हो रही है कि एक या दो लोगों को کچھ چوٹ زیادہ ہی چوٹ لگی ہے.
جی بہت شکریہ عمران اس تازہ جانکاری کے لیے. اور اب چلتے ہیں ممبئی. ممبئی کے اگست کرانتی مارگ میں بھی ویروت پردرشن ہو رہا ہے جہاں سینکڑوں لوگ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ فلم جگت کے بھی کئی لوگ ہیں. بی بی سی سنواداتا جہانوی مولے ہمارے ساتھ ہیں. جہانوی آپ کیا اس وقت ابھی وہیں اگست کرانتی مارگ میدان پہ ہیں؟
جی بس کچھ ہی سمے پہلے یہاں پہ جو ویروت پردرشن چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے یہاں پر لوگوں کا جماوڑا دیکھا. اگست کرانتی میدان ایک ممبئی کا ہسٹورک گراؤنڈ ہے اور یہاں پر چھاتروں کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ اور جو وپکش کے سمرتھک ہے وہ بھی آج اکٹھا ہوئے تھے. سبھی ناگرکتا سنشودھن قانون کے خلاف پردرشن کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھ میں جھنڈے پوسٹرز لے کے سلوگنز لگا رہے ہیں, کچھ لوگ گانے گا رہے تھے ہر جگہ. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بالی ووڈ کے کچھ سیلیبریٹیز, کچھ ڈائریکٹرز اور ایکٹرز جیسے نندیتا داس, فرحان اختر, انوراگ کشیپ یہ یہاں پر ویروت پردرشن کرنے کے لیے آئے تھے. ہر طرف ہے بہت ہی پولیس کا جماوڑا ہمیں دکھائی دیا, لیکن ممبئی میں اور مہاراشٹر کے باقی علاقوں میں بھی جہاں جہاں پر ویروت پردرشن ہو رہے ہیں وہ شانتی پورو طریقے سے ہی ہو رہے ہیں.
جی بہت شکریہ جانوی مولے آپ کا اس جانکاری کے لیے. ادھر سرکار کا کہنا ہے کہ وپکش اس کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہے. بی جے پی کے ورشٹھ نیتا اور کیندری منتری پرکاش جاوڑیکر نے آج ایک کارکرم جو بی جے پی کا سنگھٹناتمک بیٹھک ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی دیش اویدھ گھسپیٹھیوں کو سنرکشن نہیں دیتا ہے اور بی جے پی اویدھ ودیشی گھسپیٹھیوں کے خلاف ہے, لیکن عام آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی ودیشی گھسپیٹھیوں کے پکش میں ہے. ناگرکتا سنشودھن قانون کو لے کر بھرم پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ تھا پرکاش جاوڑیکر کا کہنا. ادھر کانگریس پارٹی کے پورو ادھیکش راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی سرکار بھارت کی آتما کا اپمان کر رہی ہے. اور اب ایک خاص خبر. بی بی سی دیش کی مہیلا کھلاڑیوں کو سمانت کرنے کے لیے پہلی بار ایک ایوارڈ لے کر آ رہا ہے. بی بی سی کی بھارتی بھاشاؤں کی سمپادک روپا جھا اور بی بی سی کے ایشیا پیسیفک کے بزنس ڈیولپمنٹ ہیڈ اندو شیکھر نے دلی میں آج پریس کانفرنس میں اس کی گھوشنا کی. بھارت کے لیے اولمپک میڈل جیتنے والی پہلی مہیلا کھلاڑی کرنم ملیشوری بھی پریس کانفرنس میں موجود تھیں, وہ مکھیہ اتیتھی تھیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے روپا جھا سے بات کی اور یہی پوچھا کہ اس ایوارڈ کے پیچھے آخر کیا اُدیش ہے.
جی اقبال, پہلی بار بی بی سی انڈین اسپورٹس وومن آف دا ایئر اوارڈ کی گھوشنا ہوئی ہے اور اس کی گھوشنا آج ایک پریس وارتا میں ہم نے کی ہے. تو مقصد اس کے پیچھے صرف ایک اوارڈ کرنا نہیں ہے بلکہ ایک بہت ضروری کہانی کو کہنے کی منشا ہے اور وہ ضروری کہانی مہیلاؤں کو لے کر کے ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مہیلاؤں کے اوپر جب میڈیا کوریج کرتی ہے تو انفارچونیٹلی درباگیہ پورن ہے کہ زیادہ تر کہانیاں ہم ان کے اوپر ہو رہی ہنسا پر کرتے ہیں یا ان کے بہت سماج میں ان کی بھومیکا کیا ہو اس پر ہوتی ہے یا پھر سواستھ سے سمبندھت وغیرہ وغیرہ, پر وہ چپ چاپ بڑی خاموشی سے ایک نئی عبارت جو لکھ رہی ہیں وہ ان عبارت کو اور ان کہانیوں کو سامنے لانا, آڈینسز کے سامنے لانا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا اب ایسا لگا کہ اب دیری ہو رہی ہے, یہ ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں تمام بڑے ٹورنامنٹ میں بھارت میں مہیلاؤں نے کمال کا پردرشن کیا ہے اسپورٹس میں, تو ان کی جو پریدھی ایک باندھ سی دی گئی ہے, جو اسٹیریوٹائپنگ ہو گئی ہے عورتوں کی بھومیکا کو لے کر کے, اسے توڑتی ہوئی یہ جو عورتیں ہیں, یہ جو لڑکیاں ہیں, وہ ان کی کہانیاں کہنا ضروری ہے. اور اس کا ایک اس ایڈیٹوریل انیشیٹو کو لے کر کے ہم نے اپنی پرتیبدھتا دکھلائی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بی بی سی کے سبھی پلیٹفارم پر اور سبھی بھارتی بھاشاؤں میں اس بات کو لے کر کے اس کے کوریج کو لے کر کے ایک طرح کا رجحان آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور جو کہ بہت ضروری ہے. اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ جس طرح سے مین اسپورٹس کا کوریج ہوتا رہتا ہے اور وہ بہت بڑے استر پہ ہوتا ہے, کرکٹ کا کوریج ہوتا ہے, اسی طرح سے عورتیں لڑکیاں جہاں جہاں نئی انسپریشن بن کے ابھر رہی ہیں ان کو ایک طرح سے درج کرنے کی کوشش ہے. آج پریس کانفرنس میں بھارت کی پہلی اولمپک میڈل ونر کرنم ملیشوری بھی موجود تھی. آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے اس اوارڈ کے لیے کیا کہا.
2000 کے بعد تو کافی سینری چینج ہو گئی ہے. پہلے اولمپک تک جانا ہی بہت بڑی بات مانتے تھے, لیکن اب مہیلائیں اولمپک میں جا بھی رہی ہیں اور میڈل جیت کے بھی لا رہی ہیں.
तो बीबीसी लेकर आ रही है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। और अब चलते हैं अमरीका। अमरीकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को मंजूरी दे दी है। अमरीकी इतिहास में ट्रंप ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग को मंजूरी दी गई है। सुनिए सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
सन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही कुछ डेमोक्रेट्स द्वारा ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की बातें की जा रही थीं और अब 18 दिसंबर 2019 में ट्रंप को इम्पीच कर दिया गया। इससे पहले दो अमरीकी राष्ट्रपतियों एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन का इम्पीचमेंट किया गया था। बुधवार को डेमोक्रेट्स की बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा में 197 के मुकाबले 230 मतों से महाभियोग को मंजूरी दी गई। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ दो आरोपों में इम्पीचमेंट पर वोटिंग के नतीजे सुनाए।
आर्टिकल 1 इज अडॉप्टेड। द क्वेश्चन इज ऑन द अडॉप्शन ऑफ आर्टिकल 2। दोज इन फेवर से आई, दोज अपोज्ड नो। द आईज हैव इट।
ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए दबाव डाला था। महाभियोग प्रक्रिया के तहत ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुई फोन वार्ता की जांच हुई। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि इस फोन वार्ता में राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर यूक्रेनी ऊर्जा कंपनी बुरिज्मा और जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ कथित धांधली की जांच करने के लिए दबाव डाला था। राष्ट्रपति ट्रंप पे दो आरोप लगाए गए। पहला ये कि ट्रंप ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और दूसरा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद के काम में बाधा डाली। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद को भी रोक दिया था। लेकिन ट्रंप इन तमाम आरोपों को खारिज करते रहे हैं। जब उनके खिलाफ महाभियोग पर वोटिंग हो रही थी तब वो मिशिगन में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। महाभियोग को निचले सदन में मंजूरी मिलने के बाद अगले महीने ये मामला रिपब्लिकन सांसदों के बहुमत वाले सेनेट में जाएगा। कुल 100 सेनेटरों में से 53 रिपब्लिकन और 47 डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं और वहां ये उम्मीद की जा रही है कि रिपब्लिकन पार्टी के सभी सेनेटर राष्ट्रपति ट्रंप के इम्पीचमेंट के नतीजे में उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के खिलाफ वोट दे सकते हैं। उधर डेमोक्रेट्स ये शिकायत कर रहे हैं कि सेनेट में महाभियोग के सिलसिले में रिपब्लिकन द्वारा चलाए जाने वाला ट्रायल न्यायपूर्वक नहीं होगा। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
तो दोस्तों आज गुरुवार है और हम आपके खतों का जवाब देते हैं, लेकिन माफ़ करिएगा चूंकि आज वक्त हमारे पास नहीं मिल सका इसलिए हम आपकी चिट्ठियों के जवाब नहीं सुनवा सके। और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों में आपका स्वागत है, मैं हूँ रेखा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस पर आईपीएल 2020 नीलामी के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बोली लगी है। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा। ये आईपीएल इतिहास में किसी भी गेंदबाज पर लगी सबसे बड़ी बोली है। वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी युवराज सिंह यानी 16 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ने से महज 50 लाख रुपए दूर रह गए। कमिंस को खरीदने के लिए सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन बोली की रकम 12 करोड़ रुपए के पार होने के बाद दिल्ली ने हाथ खींच लिए। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और अब जाते जाते एक दफा फिर सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। हाल में बने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में आज विरोध प्रदर्शन हुए और प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने की पूरी कोशिश करती रही। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने संसद के सत्र के शुरू होने से पहले सरकार की योजनाओं के बारे में उद्बोधन देते हुए कहा कि अगले साल जनवरी के आखिर तक यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना सरकार की बड़ी प्राथमिकता होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि STARTको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेबनान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच देश की राजनीतिक पार्टियां नए प्रधानमंत्री के नामांकन पर विचार कर रही हैं। इस पद के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री हसन डियाब की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के आवास के सामने सैकड़ों की संख्या में आज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रधानमंत्री छुट्टियों से वापस आएं और देश में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। अल्जीरिया में बीते सप्ताह हुए चुनावों के बाद नए राष्ट्रपति अब्दुल मजीद टिबोन ने आज शपथ ले ली है। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने बड़े स्तर पर इन चुनावों का बहिष्कार किया था। टिबोन ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बूतेक्लिफा की जगह ली है, जिन्हें अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था। बीबीसी समाचार।
दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।